ओम शांति। आज का प्रातः क्लास है 16/5/1965। अभी आत्माओं को अच्छा निश्चय है कि बाबा आया हुआ है, बाबा पढ़ाए रहे हैं, माने भगवान पढ़ाए रहे हैं। अरे भगवान तो निराकार को ही कहा जाता है, बच्चों को तो बहुत खुशी होनी चाहिए। सन्मुख आने से आत्मा कहती है, समझती है कि बाबा आया हुआ है। क्या करने आया है? सबकी सदगति करने। कब की बात है? हैं? 65 की बात है। ये कहें कि बाबा जो निराकार बाबा है वो साकार तन में 65 में सबकी सदगति करने आया हुआ है, ये कहें है? अरे आया हुआ है या नहीं? किस लिए? सब की सदगति करने के लिए। अरे आया हुआ है हैं? आगे वाला पार्ट का इशारा किया क्यों? आगे की बात थोड़ी ही, आया हुआ है माने 65 की बात बताई। सन्मुख आया हुआ है तो जिस तन में सन्मुख आया हुआ बताया उसके लिए कहें कि सबकी सदगति करने आया है। क्या करने आया? सबकी सदगति करने आया। गाते तो हैं बरोबर, सर्व का सदगति दाता और सर्व का जीवन मुक्ति दाता, तो किसके लिए गाते हैं? हैं? दादा लेखराज ब्रह्मा के लिए गाते हैं, हैं? उस समय तो सन्मुख ब्रह्मा के तन में ही आया हुआ था। अभी तो सब है जीवन बंद, बच्चे अच्छी तरह से जानते हैं और निश्चय है, भले घड़ी घड़ी भूल जाते हैं, माया भुलाए देती है कि हम जीवन बंध में हैं, परंतु अभी ये तो समझते हैं ना, इंतजार में सन्मुख बैठे हैं कि निराकार बाबा इस रथ पर सवार हो आए हुए हैं। जैसे मुसलमानों का होता है मोहम्मद का पटका घोड़े के ऊपर रख देते, फिर क्या कहेंगे? इस घोड़े पर मोहम्मद की सवारी की निशानी पटका रख देते हैं। इसे कहते हैं टर्बन, अभी घोड़े की भी बात नहीं रही, टर्बन की भी बात नहीं रही, क्योंकि यहाँ टर्बन तो कुछ है ही नहीं, यहाँ तो है निराकार बाबा की प्रविष्टा। बच्चों को बहुत बहुत खुशी होनी चाहिए कि स्वर्ग का मालिक बनाने वाला, सतयुग का मालिक बनाने वाला या विश्व का मालिक बनाने वाला बाबा सन्मुख आया हुआ है। ऐसी नहीं है कि सिर्फ सन्मुख है, उसी समय में जब बताते हैं, अभी तुम सब बच्चों को बताते रहते हैं, बड़ी खुशी आएगी कि विश्व का मालिक बाबा गीता का सच्चा सच्चा भगवान है। आएगी क्या उस समय सन 1965 में ये बड़ी खुशी नहीं थी? ऐसे कहेंगे, भविष्य की बात बताई, क्योंकि वो गीता का भगवान कृष्ण तो झूठा हो जाता है, ये हमारा सच्चा सच्चा बाबा जो इस झूठ खंड को सच खंड बनाते हैं, तो आत्मा की बुद्धि बाबा के साथ चली जाती है। उस समय हमारी आत्मा की बुद्धि बाबा के साथ जाएगी, कृष्ण के साथ नहीं। ये है आत्मा का परमात्मा के साथ लव। सो जब बाप मिले तब लव बंधे ना। एक ही दफा ये लव की कनेक्शन होती है और आत्मा और परमात्मा मिलते हैं। किसको मिलते हैं? ये खुशी आत्मा परमात्मा मिलने की किसको चढ़ती है जो बहुत काल से अलग है? आत्माएं समझती है कि बरोबर हम बहुत काल से अलग हैं। बाबा खुद भी कहते हैं कि मैंने शुरुआत में तुमको सुख के संबंध में भेजा था, अभी आकर के तुमको दुख के बंधन में देखता हूँ और फिर तुमको सुख के संबंध में बांधता हूँ। देखो बच्चों को कहते हैं कि तुम ही थे जो तुम अपने जन्मों को भूल गए हो, कि बरोबर हम ही 84 जन्म लेते हैं। अभी तुम बच्चों को सर्टेनिटी होती है, सबको नहीं, सब तो 84 जन्म नहीं लेते हैं। कौन सब है? जो भी बच्चे हैं यहाँ तो ऐसे ही बोल देते हैं कि मनुष्य का 84 जन्म या 84 का चक्कर, वो बोल देते हैं 84 लाख का चक्कर, परंतु 84 लाख का चक्कर तो किसी की बुद्धि में बैठेगा भी नहीं और समझाए भी नहीं सकेंगे। ये तो बच्चे समझते हैं कि बरोबर 84 लाख का हिसाब कोई नहीं बता सकता, बरोबर 84 का हिसाब बाबा ने बिल्कुल ठीक बताया कि हम बाबा के बच्चे 84 जन्म लेते हैं और लेते ही रहेंगे। कितने हैं बाबा के बच्चे हैं? हैं? हाँ, जो बाबा के बच्चे हैं वो है 4.5 लाख बच्चे। क्या ब्रह्मा बाबा उस लिस्ट में नहीं है? है नहीं, वो 84 जन्म नहीं लेते, कम लेते हैं, 84 नहीं लेते। फिर है थोड़े कम, वो तो थोड़े कम सभी लेते हैं पहले को छोड़ करके। माना जो चंद्रवंशी आत्माएं हैं सतयुग के आदि में जाकर के जन्म लेंगी, राधा कृष्ण के साथ ही जन्म लेंगी, पहले जन्म में वो 84 का चक्र नहीं काटेंगी, 84 जन्म लेंगी ये नहीं, वो भी तो 84 जन्म लेती है। हाँ, वो चंद्रवंशी है और तुम सूर्यवंशी हो। दोनों मिलकर के प्रवृत्ति मार्ग बनता है। अभी सामने सन्मुख बैठे हो, कौन सुनता है? जानते हो कि हम आत्माएं गारंस द्वारा कानों द्वारा सुनती हैं और बाबा इसके मुख द्वारा सुनाई रहे हैं। खुद कहते हैं कि मुझे आधार तो लेना पड़े ना, मुझे आधार भी उन्हीं का लेना पड़े जिसको मुझे ब्रह्मा का नाम देना पड़े। क्या गुलजार का आधार लेता है क्या? अगर गुलजार का आधार लेता है तो उनका नाम भी ब्रह्मा रखना पड़े। सूक्ष्म बतन में भी ब्रह्मा, सो भी प्रजापिता ब्रह्मा। कौन सी स्टेज में? सूक्ष्म मनन चिंतन मंथन की स्टेज में। अभी प्रजापिता ब्रह्मा तो जरूर मनुष्य चाहिए ना। मनुष्य चाहिए या देवता चाहिए? सूक्ष्म बतन में देवताएं रहते हैं या मनुष्य रहते हैं? वो तो देवताएं। सूक्ष्म बतन में थोड़े ही कोई कह सकेंगे नहीं, स्थूल वतन में आकर के फिर खुद कहते हैं कि ब्रह्मा के तन में प्रवेश करता हूं। मना मैं सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा में नहीं आता हूं, तुम्हारे में प्रवेश नहीं करता हूं। उसका आधार लेकर तुमको अडाप्ट करता हूं। उसका माने किसका? उसका आधार लेकर तुमको अडाप्ट करता हूं। किसका आधार लेकर? है ब्रह्मा। ब्रह्मा को उसका कहते हैं कभी? ब्रह्मा के तो बाजू में ही बैठा बोल रहा है। तो इसका कहेंगे या उसका कहेंगे? उसका किसके लिए कहा? प्रजापिता के लिए। उसका आधार लेकर तुमको एडाप्ट करता हूं, गोद में लेता हूं और इसके तन में बैठ करके तुमको अभी गोद लेता हूं। तुम जानते हो कि अब हम आत्माएं ईश्वर की गोद में जाती है, क्योंकि शरीर है नहीं, तो शरीर बिगड़ तो गोद हो नहीं सकती है। जैसे कोई कन्या की आत्मा है और कोई बच्चे की आत्मा है, तो आत्मा कहती है मैं शरीर द्वारा इनकी बनती हूं, परंतु आत्मा का ज्ञान न होने के कारण कुछ समझते नहीं है, बस देह अभिमान होने के कारण कहती है मैं इनकी बनती हूं, इनकी बनती हूं, परंतु वास्तव में तो ऐसा कह न सके कि मैं आत्मा इस शरीर द्वारा इनकी बनती हूं। सो हो गया वो जीवात्मा, मैं जीवात्मा शरीर सहित इनकी बनती हूं। यहां भी तो बाप आकर अभी जीवात्मा बना है, जैसे बैठकर लोन लिया है, जीव इनका नहीं है, इनकी आत्मा का जीव छोटा नहीं होता है, गर्भ में नहीं जाता है। ये आकर के बोलते हैं कि मैं इनमें प्रवेश करता हूं, जैसे आत्माएं तुम्हारे में भी प्रवेश करती है ना, प्रवेश करती है, फिर एक दो में प्रवेश हो करके एक दो में शरीर को प्यार भी करते हैं। 16/5/65 की वाणी का दूसरा पेज। इस समय में बाबा बोलते हैं कि मैं भी इस आत्मा में हूं और मैं तो जादूगर हूं, मैं बच्चा भी बन जाता हूं। हैं? किसका बच्चा बन गया? हैं? मैं बच्चा भी बन जाता हूं। 1965 में किसका बच्चा बन गया है? अरे ब्रह्मा के तन में आया तो ब्रह्मा कोई का कोई बाप होगा या नहीं होगा? बाबा पूछते भी हैं ब्रह्मा का बाप कौन, तो कोई है या नहीं है, कौन हुआ? प्रजापिता, प्रजापिता के रूप में बाप, ब्रह्मा के रूप में बच्चा, तो बच्चा भी बन जाता हूं और फिर मैं मम्मा भी बन जाता हूं। कैसे? ब्रह्मा का अर्थ ही है बड़ी मां, इसलिए मुझे जादूगर कहते हैं। मम्मा की दृष्टि उनको दे करके, मम्मा बनाए करके फिर मम्मा खुद बन जाता हूं। बोलते हैं इनमें तो हूं ना, मैं इनमें मम्मा बन जाता हूं, इनको मम्मा देखते हैं। बहुत बच्चे जब गोद में आते हैं तो मम्मा देख करके देखते हैं। साक्षात्कार हुआ ना, उस समय साक्षात्कारों में जाते थे कि ये मम्मा है, फिर यहां बैठ करके वो पकड़ते हैं, बच्चे समझ करके इनको पकड़ते हैं। बहुत पीते हैं, क्यों? ये सभी तो आत्मा है, सो परमात्मा आत्मा का रूप धारण करके बरोबर ये मम्मा की भाषणा देते हैं, नहीं तो मम्मा की भाषणा कैसे आवे। अब ये जादूगरी तो बहुत है, परंतु तो क्या करें, वो जादूगरी जास्ती नहीं दिखलाते हैं, पहले दिखलाते थे। क्यों पहले क्यों दिखलाते थे हैं? अभी ये जादूगरी जास्ती क्यों नहीं चलती हैं? पहले धोबी घाट की बात गुप्त थी और बाद में संसार के सामने वो बात उजागर हो गई, और जिन दुनिया वालों के सामने उजागर हो गई उन्होंने तो उस बात की गहराई को समझा ही नहीं, तो हो अल्लाह मचा दिया। तो बोला ये जादूगरी क्या करें, अब नहीं जास्ती दिखलाते, पहले दिखलाते थे। परंतु देखा ये जादूगर जादूगर कहते हैं, पता नहीं क्या है, ये तो बेचारी ग्लानी करने लगते हैं। तो बाबा ने ये चतुराई दिखलाई कि मैं तुम्हारी मम्मा बन जाता हूँ, तुम्हारा साजन बन जाता हूँ, झट रूप बदल देते हैं, कोई देरी तो लगती नहीं है, सजनी भी बन जाते हैं, इनको सजनी, इनको ब्रह्मा को सजनी के रूप में देखते हैं, खुद को साजन देखते हैं और कोशिश करते हैं कि हम इनसे खेलें। तो वो सारा समय साक्षात्कार की बात है, उस समय में वो कोई अपनी देह में नहीं है, वो तो दिव्य दृष्टि में है, परंतु वो खेल पाल अभी बंद कर दिया है, क्योंकि इस खेल पाल को या जादूगरी को वो समझते ही नहीं है। कौन नहीं समझते, दुनिया वाले समझते ही नहीं है। फिर उनको क्या 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 का क्या कर देते, क्योंकि दुनिया में झूठ तो बहुत है, झूठी रिद्धियां सिद्धियां बहुत है और ढेर के ढेर हैं। बहुत बच्चे रिद्धि सिद्धि के नाम लेते हैं, एकदम कृष्ण बन जाते हैं। जिनका कृष्ण में भाव होगा उनको जट दिव्य दृष्टि मिल जाती है, सच्चे पच्चे उनको कृष्ण देख लेते हैं, फंस पड़ते हैं कि हाँ बरोबर यही कृष्ण है, मान लेते हैं और उनके फॉलोअर्स बन जाते हैं। ऐसे बहुत हुए, हरिद्वार में एक है जो कृष्ण मान कर निकले थे, फिर गवर्नमेंट में पकड़ लिया या कुछ ऐसी बात हुई, हरिद्वार में थे, अब वो तो ही मिसमेराइजिंग की बात, आकर्षित करने की बात, पर यहां तो सारी ज्ञान की बात है, यहां सम्मोहन की कोई बात ही नहीं है। यहां तो तुम अभी जानते हो कि बाबा आया हुआ है, ये बात बुद्धि में है, बुद्धि से समझने की बात है, यहां कोई साक्षात्कार या देह विमान की बात नहीं है। यहां बच्चे जानते हैं कि बाबा आया हुआ है, पहले पहले ये निश्चय चाहिए, पक्का निश्चय चाहिए कि हम आत्माएं हैं, और बाबा खुद आकर कहते हैं कि मैं तुम्हारा बाप हूं और तुम जो मेरी महिमा करते हो, ज्ञान का सागर है, शांति का सागर है, सुख का सागर है, फलाने का सागर है, तो देखो तुम बच्चों को आकर के इस सारे सृष्टि चक्र का ज्ञान देता हूं, तुमको त्रिकालदर्शी बनाता हूं। अभी ऐसी नॉलेज तो कोई दुनिया में दे नहीं सकता, ये तो बाप ही देते हैं ना, बाबा जिसको भक्ति मार्ग में सब पुकारते हैं, याद करते हैं, परंतु भक्ति मार्ग के अंत में ही आना है। ऐसे नहीं है कि कोई भी वक्त में कोई भगत को मिल जाएगा, नहीं, पहले शिव का साक्षात्कार भी होता था। शिव का क्या साक्षात्कार होगा, किसी को लिंग का साक्षात्कार होगा। वो जो गाया जाता है कि अखंड ज्योतिर्मय ज्योति स्वरूप है, तो उनको अखंड ज्योति स्वरूप का साक्षात्कार होगा। तो जैसी जैसी जो भावना रखते हैं, तो उनकी भावना अल्पकाल क्षण भंगुर सुख के लिए पूरी कर देते हैं। ये भक्ति मार्ग में क्षण भंगुर सुख का भाड़ा मिल जाता है। क्या? बहुतों को हनुमान का, गणेश का, सुन वाले का साक्षात्कार होता है। तो जिस जिस की जो जो भावना रखते हैं, बस उसकी भावना उसमें दृढ़ निश्चय रखने के लिए पूरी हो जाती है। ताकि बाप फिर भी कह देते हैं, क्योंकि दिव्य दृष्टि मैं देता हूं, परंतु वो सब जो भी साक्षात्कार करते हैं, वो कोई भी वास्तव में मेरे से नहीं मिलते हैं, मेरे को पहचान भी नहीं है, पहचानते ही नहीं, भले मैं साक्षात्कार कराता हूं। चलो शिवलिंग का साक्षात्कार कराऊंगा, कोई स्टार का तो करा नहीं सकता हूं, क्योंकि पूजा तो शिव की करते हैं, स्टार की पूजा तो कोई करते नहीं है। अभी तो ज्ञान किता कम क्या कितना फर्क हो गया। ज्ञान बुद्धि में आ गया कि वास्तव में तो वो स्टार है, स्टार का बड़ा रूप पूजा के लिए बनाया गया, नहीं तो कैसे पूजा करेंगे, कैसे जल चढ़ावेंगे। तो हम भी स्टार हैं और बाबा भी स्टार है, हमारी आत्मा में भी तो ये नॉलेज है, बाबा की आत्मा भी नॉलेज है, तो दोनों छोटे। तो ये नई बात हो गई ना, पहले तो ये भक्ति मार्ग में बुद्धि में नहीं था कि शिव बाप कोई ज्योति बिंदु है, ये कोई किसी को मालूम ही नहीं है और न कोई शास्त्रों में है, इसमें भी कुछ भी नहीं है। आत्मा छोटी है, उनमें 84 जन्म का पाठ भरा हुआ है, ये किसी को भी बुद्धि में नहीं है। बाप भी कहते हैं मैं भी तो इतना ही छोटा हूंगा, कोई बड़ा थोड़ा ही होऊंगा। 16:5-65 की वाणी का तीसरा पेज। मुझे तुम कहते भी हो परमात्मा यानी परम धाम में रहने वाली आत्मा, इसलिए उनको कहा जाता है परमात्मा, परे ते परे आत्मा या सुप्रीम आत्मा, सो हो जाता है परमात्मा। सुप्रीम सोल माना सुप्रीम आत्मा, सोल कहा जाता है आत्मा को इंग्लिश में, और तो कोई नाम ही नहीं है। जब तुम सामने बैठते हो उस समय में तुम्हारा एकदम रोमांच खड़ा हो जाना चाहिए, उफ, दुनिया में कोई भी नहीं जानते हैं कि बेहद का बाबा जो ज्ञान का सागर है वो इस शरीर में प्रवेश करके ज्ञान देते। अभी कृष्ण की तो कोई बात ही नहीं है, किसमें गोप और गोपियां कपराहरण करना फलाना कोई भी बात ऐसी है ही नहीं, न यहाँ ऐसी कोई बात है न फिर सतयुग में है। हर एक प्रिंस व प्रिंसेस वहां तो अपने महल में रहते हैं, वहां काय का हरण होगा। देखो शास्त्रों में कितनी झूठी बातें बनाई है, अभी मनुष्य कैसे समझे? क्या है, क्या कैसे समझे? अरे शरीर रूपी कपड़े को हरण करने की बात कैसे समझे? इतना परंपरा से जो पढ़ते आए हैं और उसको पक्का करा दिया है तो वो समझे कैसे? ये तो देह अभिमान रूपी वस्त्र हरण करने की बात है, देवान निकलता ही नहीं। परंतु इन बातों को समझते वो ही है जो आ करके फिर बरसा लेते। अभी यहां बैठे हुए हैं, देखो खुशी होनी चाहिए ना, अच्छा भला वो खुशी कायम रहनी चाहिए ना। राजधानी में जो बच्चे होते हैं तो माता पिता महाराजा महारानी जिसके बच्चे बनते हैं वो याद तो रहते होंगे ना। अभी कहते भी हैं तुम माता पिता हम बालक तेरे, माता पिता का कोई अर्थ कोई समझते ही नहीं है। अच्छा तुम माता पिता कहना वो तो ठीक है, फिर माता किसको कहा जाए? तो देखो कितना गुहीराज है। संस्कृत में कहते हैं त्वमेव माता च पिता त्वमेव, तू ही मेरी माता है तू ही मेरा पिता है। वो तो एक को कहते हैं लेकिन माता तो स्त्री चोले में होती है, फिर तू ही क्यों कहा? जरूर वो एक ही शरीर है जिस शरीरधारी में माता का रूप भी प्रवेश है, ब्रह्मा जो सहन शक्ति का आगार बन करके दिखाती है, और उसी शरीर में शिव बाप भी प्रवेश करके पाट बजाते हैं, मनुष्य सृष्टि का बाप भी उसी में प्रवेश करता है। प्रवेश करता क्या है, वो तो उस शरीर में रहता ही है, परंतु कहा जाता है कि आत्मा शरीर में प्रवेश करती है। तो देखो कितना गुहीराज, भले माता अभी उस जगदम्बा को कहा जाता है पर वास्तव में तो उसको नहीं कहा जाता है ना, क्यों? अभी माने भक्ति मार्ग में माता तो उसे जगदम्बा को कहते हैं परंतु वास्तव में उसको नहीं कहा जाता ना, क्यों नहीं कहा जाता है? क्योंकि वास्तव में माता में तो सहनशीलता का क्या होता है, सहनशीलता का आगार होता है, खजाना होता है, और जगदम्बा का तो वो पार्ट नहीं कहा जा सकता। बड़ी माता तो ये बन जाती है, तो जगदम्बा से भी बड़ी माता कौन हुई? ब्रह्मा, क्योंकि उनके सन्मुख जो भी बच्चे गए सबने ये अनुभव किया कि ब्रह्मा में जितनी सहनशीलता थी उतनी संसार में और किसी में जो सहनशीलता नहीं दिखाई पड़े। तो देखो उस माता की भी माता जरूर चाहिए, कौन सी माता की है? जगदम्बा माता की भी कोई माता जरूर चाहिए, इस माता की फिर कोई माता नहीं, कौन सी माता की माता नहीं है? अरे जगदम्बा की कोई माता नहीं या ब्रह्मा की कोई माता नहीं है? ब्रह्मा की कोई माता, जगदम्बा की तो माता ब्रह्मा हो गया। किस माता की कोई माता नहीं हो सकती। ये राज बहुत समझने की बातें हैं। किसकी बुद्धि में अच्छी तरह से बैठे, बाप को याद करे। और ये जानना है कि हमको बाबा कहते हैं कि बच्चे तुम्हारे में कोई भी अवगुण नहीं होना चाहिए, क्योंकि तुम खुद बुलाते हो कि मैं निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। निर्गुण बालकों की भी एक संस्था होती है, हैं? कौन सी संस्था होती है निर्गुण बालकों की, हैं? अरे कहाँ का गायन है? अरे अरे सभी गायन सभी यादगार कहाँ के हैं? तो ये निर्गुण बालकों की जो संस्था है वो कहाँ की यादगार है? किसकी यादगार है? अरे राम की सेना नहीं सुनी क्या है? राम की सेना है ना, रुद्रमाला के मण के, ये निर्गुण बालकों की संस्था हो गई। निर्गुण का अर्थ तो कोई समझते ही नहीं है। नहीं तो जब बच्चे जाकर कहते हैं कि मैं निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं, आपे ही तरस परोई। अच्छा अभी तो गुणवान बनना पड़े ना, कितना मीठा बनना पड़े, अच्छी तरह से बनना पड़े। क्या गुण? काम नहीं, कोई क्रोध नहीं, कोई लोभ नहीं, कोई मोह नहीं। अभी इस समय में देह का अहंकार नहीं चाहिए, क्योंकि इस समय में आत्माओं को पढ़ाते हैं, फिर कभी परमात्मा आकर के आत्मा को नहीं पढ़ाते हैं। कभी पढ़ाते हैं कभी नहीं पढ़ाते हैं। बस ये एक ही समय है जिस समय में एक ही दफा आकर के पढ़ाते हैं, जबकि वो खुद आकर के पढ़ाते हैं पढ़ने वाले को। अब ये पाठ शास्त्रों में कैसे हो सकता है पढ़ाई पढ़ाने का, आ ही नहीं सकता है। सारा ही बिल्कुल बदल जाता है। जब यहां बैठे हो ये तो जानते हो, ये हो तो चुके ना, क्यों तो क्यों ना तुम बच्चों को मुरझाहट आ जाती है ऐसी, फलाना आ जाता है, ये सब क्यों होना चाहिए? परंतु बाबा कहते हैं कि ड्रामा में ये याद रखना निश्चय, और उसी खुशी में सदा रहना ये जरा मुश्किल है। ये होगा क्या? क्या होगा कि सदा काल खुशी में रहेंगे, लेकिन अभी नहीं, अंत में होगा। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार अंत में ये फाइनलिटी होगी। जो कहा गया है कि अतीन्द्रिय सुख अगर पूछो, अतीन्द्रिय सुख की अवस्था पूछो, तो इन गोप गोपियों को जाकर के पूछो, जबकि ये फाइनल हो जाएगा, अभी नहीं। क्योंकि अभी तो ऐसा हो ही नहीं सकता है, क्योंकि अभी तो पढ़ाई पढ़ते हो और पढ़ते ही रहते हो। बाबा को कोई कहे नहीं सकते हैं कि हम 75% अतीन्द्रिय सुख में रहते। क्या? कब की बात? 65 की बात बताइए। अति इंद्रिय सुख में रहेंगे तब जबकि फाइनलिटी होगी, पीछे फाइनल बता सकेंगे, अभी फाइनल कोई नहीं बता सकता। हाँ, सबको पुरुषार्थ ही कहेंगे। किस बात के पुरुषार्थ ही है? सदा काल के लिए। हाँ, सदा काल के लिए अति इंद्रिय सुख में रहने के पुरुषार्थी। तो देखो, ये जो तुम्हारे साकार मम्मा बाबा हैं, वो भी पुरुषार्थी है, क्योंकि बच्चों के ऊपर जन्म जन्मांतर का विकर्म का बोझ है, बड़ा भारी बोझ है, ये कोई समझते नहीं है। क्योंकि जो पाप किया है वो कटा तो बिल्कुल ही नहीं है। क्या कहा, किसकी बात बताई है, किसकी बात बताई? मम्मा बाबा की बात बताई, उमरादे मम्मा और दादा लेखराज ब्रह्मा की बात बताई कि इन्होंने जो भी पाप किए हैं वो अभी कटे तो बिल्कुल ही नहीं है। क्या गंगा स्नान में पाप कटेंगे? गुरु की कृपा से पाप कटे कोई भी नहीं, किसका भी नहीं कटा है। गुरु अपने ऊपर ही कृपा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पिछाड़ी में गुरु भी आकर के नालिश देते हैं। जैसे कहते हैं भीष्म पितामह द्रोणाचार्य फलाने को भी कन्याओं द्वारा ज्ञान बाण मारे, ऐसे नहीं है कि वो मरे हैं फिर उसने तीर मारा है तो गंगा निकल आई। वहां भी इन बच्चियों का नाम निकाल कर नीचे से गंगा निकाल देते हैं। इन बातों को समझते हो क्या है? इन बच्चियों को नंबर बार निमित्त बनाया जाता है नाम निकालने के लिए। जो भीष्म पितामह को छोटी छोटी कन्याएं बाण मारेंगी फिर नीचे से माने बाद में गंगा निकले, इस बात को समझते हो? जब वो बैठ करके ज्ञान दिया है तो उस समय में वो जैसे कि गिरा है, कौन है? कौन गिरा? जब ज्ञान गंगा निकली कन्या के रूप में तो वो भीष्म पितामह गिरा है, क्योंकि बाण की बात निकालते हैं ना। तो फिर उस समय में पिछाड़ी में जैसे यहां मनुष्य मरते हैं तो उनको गंगा जल मुख में डालते हैं, वो जो कथा बना कर रखी है कि बाण मारा और फिर कहते हैं वो जैसे कि मर गए हैं, पिछाड़ी में मरते समय गीता का जल चाहिए, तो अर्जुन ने वहां बाण मारा है, पानी निकाला है, ज्ञान जल की बात है, कहां बाण मारा है, हैं? वहां माने कहां? अरे धरणी माता को बाण मारा, फिर धरणी माता से क्या निकला? गंगा मैया निकली, उनके मुख में डाल दिया। किनके मुख में है? सब ज्ञान को, ज्ञान जल को भीष्म पितामहों के मुख में डाला। जैसे आजकल करते हैं, कोई मरते हैं तो उनके मुख में गंगा जल डालते हैं। ये आखानी बैठ करके बनाई है। अभी वो गंगा जल की बात कुछ नहीं है। कौन से गंगा जल की? स्थूल गंगा और स्थूल जल की बात नहीं है। काई की बात है? ज्ञान जल की और चैतन्य ज्ञान गंगा की बात है। ये तो तुम जानते हो कि बेहोश होते हो तो तुमको शिव बाबा की याद दिलाते हैं। अभी वो याद दिलानी नहीं चाहिए, अभी तुमको हिर जाना चाहिए। जबकि बाबा ही तुमको कह देते हैं कि माम एकम याद करते रहो, तो फिर पिछाड़ी में तुमको कोई आकर कहेंगे भी कि शिव को याद करो तो इतना फायदा नहीं होगा, क्योंकि तुमको फिर पिछाड़ी में कोई कहने वाला नहीं चाहिए। हैं? कहने वाला किसको चाहिए? याद करो, ये कहने वाला किसको चाहिए? हैं? उन गुरु सन्यासियों को चाहिए। तुम्हारी तो याद पक्की हो जानी चाहिए। तो देखो, इतना पुरुषार्थ करो जो पिछाड़ी में तुम शरीर छोड़ो तो आप ही याद आवे। कोई कहने वाला हो तो फिर वो तो ठीक नहीं रहा, क्योंकि उससे मदद लेनी पड़े ना। बिगर मदद है तुमको बाप को याद करना है। ऐसे नहीं कि तुमको उस समय में कोई मदद देवे, फिर तो वो कामन बात हो गई। राम कहो, राम कहो, शिव शिव कहो, शिव कहो, उस समय भी ये होना नहीं चाहिए और होना ही नहीं है, क्योंकि उस समय मारा मारी बहुत हो जाती है। तुम पता नहीं कहां कहां भिन्न भिन्न जगह में रहते हो। जब दुनिया का विनाश होगा तो एक ही जगह इकट्ठे होकर के रहेंगे कि सब बिखर जाएंगे? हाँ, कोई यहां भी बहुत होंगे, यहां भी कोई तुमको उस समय में नहीं कहेंगे कि शिव कहो शिव कहो, वो कामन बात हो जाती है। जैसे कि अभी कोई मरता है तो उनको कहेंगे राम कहो राम कहो फलाना कहो, उसे पिछाड़ी समय में तो नहीं होगा, वो तो अपनी पूरी याद चाहिए। बच्चों का इतना लव होना चाहिए तब तुम अपने नंबरवार उच्च पद को पाएंगे। ये तो तुम भी समझते हो कि नंबर वन सदगति दाता, सदगति तो ये है ऊपर में। क्या नंबर वन सदगति ये कौन सी है ऊपर में? हैं? जो कोई याद न दिलाए, हैं? अपने आप याद आए। हम जानते हैं कि इनकी डायनेस्टी भी है जिसने सदगति पाई है। इनकी डायनेस्टी जो इनके पीछे आएंगे, किनकी? हैं? ब्रह्मा की। अभी तुम समझते हो, बाबा समझाते हैं कि पहले पहले नंबर में श्री लक्ष्मी नारायण और उनकी प्रजा भी तो जरूर होगी, शाहजादे भी होंगे। फिर भी पहले नंबर में राजाओं में भी राजाएं जो होंगे, समझो आठ हैं, तो भी नंबर वन तो यही गिने जाएंगे ना। हैं? कौन कौन गिने जाएंगे आठ में नंबर वन? हैं? जो संगम युग में विश्व के मालिक बनते हैं, क्योंकि इन्होंने अच्छी तरह से याद का पुरुषार्थ किया है और वो याद करते ही रहते हैं, क्योंकि दूसरों को याद दिलाकर तुम बच्चों को कहते हैं ना, अच्छा चलो बाबा भी कहते हैं, ये भी कहते होंगे कि बाबा को याद करो, बाबा कहेंगे हे बच्चे मुझे याद करो, तो दोनों का फर्क होता है ना, अक्षर में कितना फर्क होता है। शिव बाबा कहते हैं हे मेरे बच्चे आत्माएं मुझे याद करो, और ये कहेंगे हे मेरे भाई आत्माएं तुम बाबा को याद करो, तो देखो कितना फर्क हो जाता है। तो बाप अभी कहते रहते हैं और ये कहेंगे भाई, परंतु ये हिर ही गया है, इसको कोई भाई कहकर कहने का रहता नहीं है, ये बाबा ही आकर के कहते हैं, घड़ी घड़ी बोलते हैं बच्चे बच्चे। अभी पहचानते हो ना कि मैं तुम्हारा बाप हूँ और बरोबर अभी तुमको लेने आया हूँ, ये याद करते हो, कल पहले भी आए थे तुम बच्चों को गुलगुल बना करके फूल बना करके ले गए थे, अभी तो नहीं कि यहाँ फूल बनेंगे, कांटे से फूल बनने का ये संगम युग की सीजन है, क्योंकि ये बदल जाता है। क्या बदल जाता है, है? नहीं, ये संगम युग का सीजन भी बदलता रहता है, इसको कहा ही जाता है बरोबर, ये सारी दुनिया कांटों का जंगल है, फिर बदल करके क्या हो जाएगा, कांटों से फूलों का बगीचा हो जाएगा। जानते हैं कि बाप जरूर पैराडाइज स्थापन करते हैं, पर उस पैराडाइज को कौन निवास करते हैं, ये उन विचारों को पता नहीं है। भारतवासी जानते हैं ये भारत पैराडाइज था, स्वर्ग था, फिर भी शास्त्रों में जो कचड़ पट्टी लिखी हुई है उनकी बातों से भूल जाते हैं। नाम बरोबर लेते हैं कि स्वर्ग था, श्री लक्ष्मी नारायण का राज्य था, सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण थे, तथा राजा रानी यथा राजा रानी तथा प्रजा थी, फिर भी उनमें बताए देते हैं कि कंस भी था, हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष था, फलाना था। तो देखो शास्त्रों में कितना गपोड़े लगाए दिए, बाप बैठ करके ये समझाते हैं, क्या है कि जैसे स्वर्ग की बातें की हैं कि वहां कंसी जरासंधी भी थे, वो कहां की बातें हैं, है? हाँ, जो संगम की स्वर्ग स्थापन होगा उस समय इस दुनिया में कोई न कोई कंसी जरासंधी का पाठ बजाने वाले भी होंगे, अभी अभी भी हैं। अभी तो तुम समझते हो कि शास्त्रों में क्या क्या है, मैं तो इन शास्त्रों का सार समझाता हूँ। मीठे बच्चे, ये सभी भक्ति मार्ग की सामग्री है, ये भी जैसे एक सीढ़ी है, इस सीढ़ी को एकदम ऊपर चढ़ना है, पीछे एकदम नीचे आना है। बाप अभी क्या कहते हैं, क्या कहते हैं सीढ़ी के बारे में, क्या कहते हैं, है? जिन्नात बनो, जिन्न मिसल एकदम ऊपर चढ़ो और नीचे उतरो, मैं तुमको ये काम देता हूं, है? क्या काम देता हूं, ऊपर चढ़ो और नीचे उतरो आलफ और बे को याद करते करते अगर याद करने से थक जाएंगे तो फिर माया खा जाएगी। ये आख्यानियां भी तो बनाते हैं ना। अच्छा, ओम शांति।